ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. ஆப் சபி தாதி ஜி கே ஜீவன் கா தியாக், தபஸ்யா ஔர் சேவா கே எக் பாகவத் கே ரூப் மே சுன் ரஹே ஹேன். ஔர் பாகவத் வஹி கஹலாதா ஹை ஜோ ப்ராக்டிகல் மே ஹோதா ஹை. ஔர் கீதோ கே மாத்யம் சே, சப்கே அனுபவோ கே மாத்யம் சே, ஆப் சபி சுன் கர் கே அப்னே அந்தர் சமா கே பஹுத் குஷ் ஹோ ரஹே ஹேன். ஔர் ஜோ பி பஹன் பாயி ஆஜ கே தின் யஹான் பர் உபஸ்தித் ஹேன், சாய் மாதாவோ கி பட்டி யா தாதி கே நிமித் ஜோ பி ஆயி ஹேன், பஹுத் பஹுத் சௌபாக்யசாலி ஹே, பத்மா பதம் பாக்யசாலி ஹே. கியோகி ஹமாரி ஆதரணீய மீட்டி தாதி சுரு சே லேகர் கே பாபா கி ஸ்ரீமத் கே அனுசார் ஜோ சேவாயே கி ஹே விஸ்வ கல்யாண கி, தோ ஹம் சபி யூபி கே ஜாதா பாக்யசாலி கஹேங்கே. क्योंकि दादी जी ने प्रथम सेवा उत्तर प्रदेश से शुरू किया था 1954 में, इलाहाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा कुंभ का मेला था, उसमें बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी, जिनको हम प्यार से बड़ी दादी कहते, तो दादी जी और गंगे दादी दोनों जब कुंभ में गए थे तो दादियों ने वो दिन नहीं देखे थे जहां इतनी कड़ाके की ठंडी हो और रेतों में रह करके और सबकी सेवा करना और बिना साधन के सेवा करना. साधना के आधार पर तो सभी सेवा करते हैं, लेकिन हमारी दादियों ने विशेष, दादी प्रकाशमणि ने बिना साधन के सारे विश्व की आत्माओं को संदेश दिया. आप कहेंगे वो कैसे, तो कुंभ मेला में देश विदेश के और सारे संत महात्माएं होते. उस समय दादी जी और गंगे दादी कुछ नहीं था, तो इलाहाबाद में पेपर वालों से पेपर स्पॉन्सर कराती थी और छपाई वालों से फ्री में छपाई कराती थी. और वो जब पर्चा छपाती थी वो एक एक संत महात्माओं के मंडप में जा करके सबको ईश्वरी संदेश देती थी. तो शुरुआत दादी जी ने वहां से सेवा किया और उसके पश्चात कानपुर का निमंत्रण मिला. तो जब दादी जी कानपुर आए गंगे दादी जी के साथ साथ, तो वहां भी कोई साधन और सुविधा नहीं थी. जो निमंत्रण मिला वो अच्छे का निमंत्रण था, रहने की सुविधा थी, सब कुछ था, लेकिन उस समय दादियों ने अपने खाने का, रहने का, पहनने का कुछ भी नहीं सोचा. जैसे कुंभ मेला में भी दादियां जब सेवा करती थी तो बताती थी कि 2 पैसे का आलू लेते थे और 2 पैसे का आटा और 2 पैसे का कोयला, कैसे उसी से 2 टिक्कर बना के और वो भोजन करके मस्त सारा दिन कुंभ में सेवा करती थी. और जब कानपुर में दादी आई तो उस समय भी कोई पैसे तो थे नहीं हाथ में, पर बड़ों बड़ों की सेवाएं किया. तो दादा आनंद किशोर जी साथ में गए, तो उस समय में पूरे दिन के लिए भाड़े पर साइकिल मिलती थी, तो चार आने की साइकिल पूरे दिन के लिए मिल जाती थी। 12 घंटे 8-10 घंटे आप चलाइए, शाम को जमा करिए और चार आना पैसा दे दीजिए। तो आधा समय प्रकाशमणि दादी साइकिल पे बैठ के जाती थी सेवा करने। आनंद किशोर दादा साइकिल चलाते थे और दादी पीछे कैरियर पे बैठ के जाती थी, और आधा समय गंगे दादी जाती थी। तो जब दादी जाती थी तो गंगे दादी किचन का जो भी भोजन बनाना बनाती थी, और जब गंगे दादी जाती थी तो प्रकाशमणि दादी बनाती थी, बड़ी दादी जी। तो दोनों मिलके सेवा करते थे। और सेवा कैसे किया, उस समय में टेलीफोन की डायरेक्टरी होती थी, उस डायरेक्टरी से सबका एड्रेस देखते थे। तो जो टेलीफोन से एड्रेस मिलती थी वहां जा करके और सेवा करते थे। तब कोई ब्रह्मा कुमारी इसका नाम भी नहीं जानता था। तो किस प्रकार से दादियों ने सेवा का फाउंडेशन डाला, तो दादी ने बहुत प्यार से सेवा किया और बाबा के बच्चे भी बहुत अच्छे निकलते गए। तो उस समय इतना प्रभाव था दादियों के त्याग का, तपस्या का और सेवा का। तब भी इतना कोई नहीं था जितनी सुख सुविधा आज हमारे आश्रम में है। हम जितना इस समय सब कुछ देखते हैं, बहुत भव्यता है, बहुत भव्यता है, लेकिन दादियों ने तो एक तरह से फाउंडेशन स्टोन है। बहुत कुछ सहन किया दादी ने और वो सेवाएं किया। पर दादी जी का मैंने जो अनुभव किया, जैसे शिव बाबा के साथ तीन रिश्ते बताते हैं, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, ये मुख्य रिश्ता। तो दादी जी के साथ माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, और दादी सबको सखी कहती थी, मेरी सखियाँ आई हैं। तो जब दादी जी शुरुआत में सेवा में कानपुर में थी तो उस समय क्या करते थे, शाम को खिचड़ी बनाते थे और खिचड़ी को उसका माड़ निकाल के एक चम्मच बेसन मिला के उसकी तो कढ़ी बनाते थे। तो खिचड़ी, कढ़ी और दो रोटी, तो उसी कढ़ी के साथ रोटी और खिचड़ी खाई जाती थी, सब्जी का पैसा नहीं होता था। तो दादियों ने उन दिनों में सेवा किया। तो एक दिन दादी ने मेरे से कहा कि तुम आलू की कढ़ी बना सकती हो। तो मैं चुप रही तो दादी ने कहा तुम आलू बॉयल करो और मैं तुमको कढ़ी बनाना सिखाऊंगी। तो कुछ आलू के पीसेस किए दादी ने, थोड़े छौंक लगा के उसको भूना और कुछ आलू को मैश किया, मैश करके उसका घोल बनाया, फिर उसको छौंक लगा के कढ़ी बना के वो आलू डाल के पका दिया। कहा देखो हो गई कढ़ी तैयार, इसी कढ़ी से चावल बनाओ और हम लोग खा लेंगे। तो उस कढ़ी से भी चावल दादी ने खाया। और जब दादी साइकिल पर जाते थे तो एक बार गिर भी गए थे, साइकिल पर बैठने भी नहीं आता था इतना, कोई प्रैक्टिस तो थी नहीं बैठने की। तो दादी ने हमको आलू की कढ़ी बनाना सिखाया, लेकिन वो जो सिखाया तो दादी ने प्यार से सभी ने खाया। तो ऐसे करते दादी की मैंने बहुत सारी विशेषताएं देखी। जब कोई भी कमी होती थी तो दादी सीधा नहीं कहती थी कि ये कमी है, नहीं। जैसे एक बार क्या था कि दादी जी बनारस गए थे और दादी जब मुझे देख लेते थे तो यही कहते थे भाई किचन में हम लोगों का जो भोजन है वो मेरे लिए ही कहती थी, यही बनाए कोई ना बनाए। तो दादी को प्यार भी था, मेरा बनाया अच्छा भी लगता था। तो कहीं भी दादी जाती थी, चाहे लखनऊ, चाहे बनारस, चाहे इलाहाबाद, तो मैंने भोजन तो बनाया। और उस समय दादी को थोड़ा भोजन की नली में तकलीफ थी तो उसका ऑपरेशन भी छोटा सा हुआ था। परहेज का भोजन था बिना मिर्च का, तो जिस माता ने भिंडी काटी तो वो मारवाड़ी माता थी, और मारवाड़ी माना तो बहुत तीखा भोजन खाना, चटपटा मिर्ची वाला। उसी भिंडी में उसने बहुत ढेर सारी मिर्ची भी काट दी, उसको घर में आदत होगी सब्जी में काट देना मिर्ची। मुझे क्या पता, मैंने तो बिना मिर्च के भोजन बनाया। जब दादी जी ने भोजन किया तो पहला ही जब गस्सा मुंह में डाला तो मुझे, जब मैं रोटी सेंक के लाई प्यार से फुलके, तो दादी कहती ठहरो तुमको गिट्टी खिलाती हूँ। तो रोटी में वही सब्जी मिर्च वाली खिलाया मुझे, अरे मेरे तो कान से ही धुआं निकलने लगा। दादी ने ये नहीं कहा कि तुमने ये क्या किया, तुमने सब्जी में मिर्च क्यों डाला, पता है मेरी तबीयत का तुमको। अगर हम होते या दूसरी बहनें होती तो जरूर बनाने वाली को यही कहती, ये तुमने क्या किया। पर दादी ने चुपचाप दाल के साथ सब्जी खा, रोटी खा ली और मुझे ये प्रैक्टिकल दिखा दिया। खैर वो तो मुझे बाद में छानबीन किया तो पता चला, पर दादी ने उफ भी नहीं किया। ये थी दादी की महानता, जो ये सभी में नहीं आ सकती है। ऐसे दादी की बहुत सारी विशेषताएं। एक बार दादी जी कलकत्ता से बंबई जा रहे थे तो रास्ते में ईगल प्लेन से टकरा गया था, तो वो थोड़ा सा प्लेन डैमेज हो गया, उसको कानपुर में उतारा गया। तो दादी जी ने फोन किया कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और मुझे ले जाओ। उसी टाइम आंधी बहुत तूफान था, तो गंगे दादी तो लेने गए, फिर मैंने अचानक, कुछ भी साधन नहीं था, 84 के दंगे में जब इंदिरा गांधी जी नहीं रही थी तो काफी कुछ था, मकानों को जलाना करना, तो हमारा भी आश्रम जल चुका था, तो मेरे पास कोई साधन नहीं था। तो मैंने जो भोजन बनाया तो दादी इतनी निर्माण चित थी, इतनी सरल चित थी कि सिर्फ खिचड़ी और तोरी की सब्जी, और दादी को गर्म भोजन अच्छा लगता था। अभी गर्म कहाँ से लाऊं, मेरे पास कैसराल भी नहीं है। तो टेबल पर मैंने जो भगोना खिचड़ी का बनाया था वो टेबल पर रख दिया, सीधा चूल्हे से उतार करके, और सब्जी का पतीला भी टेबल पर रख दिया कि गर्म बना रहे, और दादी ने उसी पतीले से परस के खाया। फिर उसके बाद दादी ने कहा कि मुझे कलकत्ता से एक कैसराल गिफ्ट में मिला है, तो वो दादी देके गई। वो पहला कैसराल मेरे पास आया, और आज तो दादी के वरदान से जो दादी के हाथ से मिला, अब तो शायद छोटे दुकानदार के पास भी इतना कैसराल नहीं होगा। तो ये दादी ने प्यार से वरदान रूप में दिया, तो मैं तो उसको वरदान मानती हूँ। तो ऐसे ही दादी, कोई भी कार्य होता था तो बहुत नम्रता से, बहुत प्यार से समझा देते थे। दादी बहुत बार कानपुर आए, और एक बार जब दादी जी आए तब भी कोई साधन नहीं होता था, तो गंगे दादी और दादी प्रकाशमणि रिक्शे में बैठ के जा रहे थे। रिक्शे से ही आना जाना, स्टेशन से भी रिक्शा, कहीं जाना है तो रिक्शा, और वो रिक्शा भैंस टकराई पलट गया। ना दादी तब भी कुछ भी नहीं, साफ करके बैठ गए, ये नहीं कहा कि मुझे चोट लगी या क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो दादी जो सेवा करते थे बहुत बहुत नम्रता से, बहुत प्यार से, और जो दादी से मिलता था, दादी की वो जो आकर्षण थी, जो एक चेहरे की चमक थी, वो दादी का हो जाता था। तो चांस की बात है, उस पिछले कल्प का कहें, इस जन्म का कहें, दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत करती थी। जो मिले होंगे हर एक का अनुभव होगा कि दादी ने मुझे सबसे अधिक प्यार किया है, लेकिन मेरे को लगता नहीं मुझे सबसे अधिक प्यार किया है। तो जहां भी होता था तो कहती थी इसको ले चलना है। तो एक बार दादी जी आसाम गए हुए थे, वहां से लौटे पंजाब जाना था और ट्रेन थी वाया लखनऊ। दादी ने मुझे फोन पे कहा कि तुम लखनऊ में आना और मेरे लिए कानपुर से भोजन बना के लखनऊ लाना, 100 किलोमीटर की दूरी है। तो जो दादी को प्रिय वो मैं बना के ले गई। तो दादी इतनी खुश होकर के स्टेशन पर बोली कि तुम मेरे साथ पंजाब टूर पे चलो। मैंने कहा दादी मेरे पास एक टावल भी नहीं है, कैसे चलेंगे, पैसा भी नहीं है। तो उस समय क्या होता था कि बोगी में जो फर्स्ट क्लास की बोगी होती थी तो जो 4 का कूपा होता था तो उसमें एक अटेंडेंट फ्री में जा सकता था। तो हम बिना टिकट पूरे पंजाब दादी के साथ सफर किए और दादी कहती थी तुमको मैं अपने बाजू में सुला लूंगी, एक तरफ मैं सिर करती हूँ एक तरफ तुम सिर करो। तो ऐसे करके चौड़ी बर्थ होती थी, दादी मुझे पंजाब टूर में सारा समय अपने साथ सुला के ले गई और टिकट तो लगना नहीं था। और जहां मैं जाती थी तो दादी कहती थी तुम रात को ना मेरे कपड़े ढीले डाले हैं पहन लो, अपने धुलाई करके डाल दो, और सवेरे तक प्रेस करके वो मेरे तैयार हो जाते थे। और जाते दादी ने सबसे पहले पेस्ट ब्रश साबुन जिस सेवा केंद्र पे रहे वो दिलाया। तो दादी ने बिना वस्त्र के बिना पैसे के अपने साथ प्यार में पूरे पंजाब का टूर कराया। और बहुत प्यार से दादी टेबल पर बिठा के भोजन कराती थी। तो जैसे दादी के साथ हम हैं तो दादी अपने साथ ही टेबल पर भोजन करवाती थी। तो दादी की तो इतनी महिमा है जिसको मैं आप सबके आगे कितना वर्णन करके करूं। और दादी हमेशा हर एक के उत्थान के लिए सोचती थी कि बनो ब्रह्मा कुमारी बनो तो आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनो, पुरुषार्थ करो तीव्र पुरुषार्थी बनो, और कोई कमी कमजोरी है तो उसको स्वाहा करो। तो अमृत वेले योग के बाद में सवेरे दादी बुलाती थी गुड मॉर्निंग करके, तो कुछ ना कुछ गुड मॉर्निंग करने जाओ रूम में तो एक महामंत्र दादी जरूर देती थी जो आज मुरली में स्लोगन्स के रूप में आता है। तो दादी जी एक कोई ना कोई बात जीवन के लिए जरूर सुना देती थी। तो ऐसे दादी का प्यार बहुत था। और जब हैदराबाद में मेला लगा था तो वहां भी दादी ने मेरे को जैसे ही देखा तो दादी ने कहा देखो मेरा भोजन तो तुम ही तैयार करेंगी, दूसरा कोई नहीं, जबकि मेरा कोई हक नहीं है, मैं कानपुर से गई हूँ, दादी निमंत्रण पर गई है हैदराबाद में, वहां सारा इंतजाम है परंतु कार नहीं। तो दादी बहुत बहुत निर्माण थी और बहुत सरलचित थी, लेकिन दादी को सभी के प्रति बहुत प्यार था। और दादी जब बंबई में रहने लगे थे तो सबसे पहले एक प्लास्टिक की चप्पल शुरू हुई, उसके पहले रबड़ की चप्पल होती थी हवाई चप्पल, प्लास्टिक वाली नहीं होती थी और या फिर चमड़े की होती थी। तो वो चप्पल दादी व्हाइट कलर का कानपुर आना हुआ तो बहुत प्यार से 2 रुपए की चप्पल दादी मेरे लिए लेके आई गिफ्ट में, नया निकला है बहुत सुंदर है बहुत मुलायम है। और वो इतने प्यार से दिया तो मुझे लगता था इतना महंगा चप्पल हम कैसे पहनेंगे, दो रुपए का चप्पल इतना महंगा, इतना प्यारा, और आज तक भी 55 साल हो गए हैं मेरे पास रखा हुआ है, अभी तक मैंने पांव नहीं डाले और कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर उसको आप देख लें, कहेंगे शायद अभी ताजा खरीद के आया है, बिल्कुल नया है, ना उसकी प्लास्टिक बिगड़ी, ना उसका रंग रूप बिगड़ा, कुछ भी नहीं। तो वो दादी की निशानी मैंने चप्पल अभी तक रखी है। और कितनी बहनें कहती हैं, ये तो तू मुझे दे दे, मैं कहती हूँ ना, ये बड़ी दादी ने मुझे प्यार से बम्बई से ला के दिया, ये तो मैं नहीं दे सकती, वो ऐसे कैसा मैंने संजो के रखा हुआ है। तो ऐसे दादी जी जब आते थे मधुबन में, हम जब बाबा के बाद रहना शुरू किया, बाबा अभ्यक्त हो गए तो दादी ही मुख्य प्रशासिका बनी। तो जैसे कोई बेटी माँ के घर आती है तो माँ जाते समय उसका सब कुछ देखती है, तो दादी कहती थी तुम अपनी पेटी खोलो, मैं देखेंगी तुम्हारा, क्या तुम्हारे पास है, क्या कमी है। तुम दादी को जब तसल्ली हो जाती थी कि नहीं सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, और जो दादी को लगता था कि है तो भी अच्छा, चार है ना, ये दो तुम रख लो, चार है दो रख लो, तुम छह रखो ड्रेस। तो ऐसे करके दादी माँ की तरह तो विदाई देते थे, इतना चेकिंग करते थे कि क्या है और क्या नहीं है। इसलिए हम दादी का प्यार तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। 12 साल दादी को अव्यक्त हुए हुआ, मैंने कुछ भी त्योहार आए, चाहे तबीयत बिगड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, ये दादी का दिन मैंने आज तक मिस नहीं किया 12 साल में, क्योंकि दादी हमारे लिए एक प्राण थी, जीवन दान देने वाली थी, जीवन दायिनी दादी थी। इसलिए मैंने आज तक भी कोई मिस नहीं किया दादी के साथ, और जो दादी ने सिखाया वो हमने जीवन में सीखा। तो आज भले आप सबको लगता है कि बहुत कुछ हमारे सेवा केंद्र मधुबन में भव्यता है, जैसे आप ताजमहल देखने जाएं तो हर एक ताजमहल की खूबसूरती की महिमा करेगा, लेकिन वो ताजमहल टिका किसके ऊपर है, ये कोई ने देखा ही नहीं। तो जिस पत्थर पर टिका हुआ है वो कितना बोझा उठाने वाला होगा, और ताजमहल को ऊपर अपने को गुप्त रखा। तो दादियों ने भी मम्मा बाबा की तरह अपने को गुप्त रखा, कभी सामने नहीं, अपने आप को कभी शो में नहीं लाए। एक बार दादी जी के साथ भोजन कर रहे थे, आम का महीना था, तो सबने तो आम खा लिया, गुठली कोई बहने, चार बहने थी, कोई खाने को तैयार नहीं। तो दादी ने कहा ये गुठली कौन खाएगा, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी ने कहा दादी इसको खाएंगे ना मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, दादी ने कहा अच्छा मैं खाती हूँ। तो उस आम की गुठली को दादी ने इतने सफाई से खाया, कहा देखो कहाँ मेरे कपड़े खराब हुए, और कहती वेस्टेज नहीं जाए, गुठली को ऐसा खाया कि एकदम सफेद कर दिया, एकदम सफेद। कहा देखो इस तरह से तुम लोग खाया करो, कोई चीज को बर्बाद नहीं करो, तो कोई चीज नुकसान ना हो, बर्बाद ना हो। तो दादी बहुत सिखाती थी, प्रैक्टिकल सिखाती थी। और एक बार जब हम मधुबन में आए तब दादी का रूम पांडव भवन में नहीं बना हुआ था, जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है उसके पीछे एक हॉल, उसमें चार खटिया आ जाती थी। तो 10-15 दिन हम रुके तो दादी उसी रूम में सोई थी, दादी को भी चार खटिया के बीच में सोना पड़ता था। तो मोहिनी बहन थी, मैं थी, और एक और दादी जी। कभी दादी ने ये नहीं कहा कि मुझे चार खाट में क्यों रखा है, तो दादियों ने बहुत त्याग किया है और बहुत ही तपस्या किया। आज उसके बल पर हम लोग तो सबको यही कहते हैं कि हम दादियों के तपस्या का, दादियों के योग बल का, दादियों की मेहनत का हम फल खा रहे हैं। जैसे लौकिक में बोलते हैं ना कि दादा कमाए और पोता खाए, तो हमारी दादियों की कमाई है, आज हम उसकी प्रारब्ध भोग रहे हैं। हम तो जैसे कोई का लौकिक पिता पेंशन पाता हो, उसके बाद में उसके बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाए, हम फ्री का पेंशन खा रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही अनुभव होता है कि दादी के साथ हमारी जितनी भी दादियां थी, लेकिन बड़ी दादी एक विशेष थी, जिसमें निर्माणता भी थी, सहनशीलता भी थी, दिव्यता भी थी, और दादी के अंदर वो शक्ति थी सबको प्यार से कंट्रोल करना, हैंडलिंग करना। तो दादी के साथ तो इतने दिन हमने बिताए हैं, इतने अनुभव किए हैं, और कितना सुना के कितना सुनाएंगे। आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन हमारी दादियां दादियां ही थी, विशेष थी दादी, जिनको कि बाबा ने भी अंत समय में दादी को सारी शक्तियां बिल कर दी, दादी के हाथ में ही हाथ दे करके बाबा अव्यक्त हुए। तो दादी को पूरी बिल पावर जैसे बाबा ने दे दी, तो शक्तियां भी दे दी और सारी विशेषताएं भी दे दी। तो दादी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं जो आज भी सभी दादी को याद करते, और देश विदेश में दादी ने जो सेवाएं की जा करके, और इतना बड़ा जो पौधा तैयार किया, तो हम सभी आज उसका फल खा रहे हैं और आप सभी भी उसकी प्रारब्ध देख रहे हैं और पा रहे हैं। तो ऐसे ही दादी को हम सत सत नमन करते हैं, जिन्होंने हमको इतना आगे बढ़ाया और हमारी पालना की और अपने साथ का अनुभव कराया और वो शक्ति दिया। ऐसे दादी को बहुत बहुत दिल की श्रद्धांजलि कहें, कोटि कोटि नमन कहें, वो भी कम है। तो सारे विश्व में हम आप सभी इतने भाग्यशाली हैं जिन्होंने दादी को प्रत्यक्ष देखा और पालना लिया, और आप लोग भी कम नहीं हैं जो भागवत सुन रहे हैं, ये सच्ची भागवत है। तो भागवत सुनने में मजा आता है ना, इसीलिए दादी जी के साथ तो जिन्होंने बिताए वो जाने, तो वो भी दिन कितने प्यारे थे और ये भी दिन कितने प्यारे हैं जो आप सभी समय पर आ गए और ऐसे मौके पर आए जब दादी जी के दिवस की अनुभूति कर रहे हैं। ओम शांति।